जय श्री साई राम साई वचनामृत कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है
दशरथतनयम् कौसल्या हृदयात्मशोभितम् रघुवंशाम्बुधि रत्नदीपिकम् नमामि रामं रामं पुटपर्ति साई रामं नमामि
शिरसा नमामि रामं पुटपर्ति साई रामं नमामि
कौशिक शिष्यं तातक हंतं यज्ञयागादि रक्षित कवचम् सोदरत्रय परिसेवक शुभगन रूपम् नमामि रामं पुटपर्ति साई रामं नमामि
शिरसा नमामि रामं पुटपर्ति साई रामं नमामि
गौतम सतिशापं शीघ्र विमुक्तं मारीच सुबाहु गर्वदहंतम् शिवधनु भंगम श्रीधर राम जानकी मनोरथम जगन्नाथनाथम साई रामं नमामि
शिरसा नमामि रामं पुटपर्ति साई रामं नमामि
लंकानगर विनाशक हेतुं भीकर राक्षस रावण काल रात्रम्
लंकानगर विनाशक हेतुं
शांति पालक
सीता समेत स शांति पालक
मातात्मज परिसेवित पावन पाद
मातात्मज परिसेवित पावन पाद
शिरसा नमामि रामं पुटपर्ति साई रामं नमामि
शिरसा
आइए श्री रामचरितमानस पे जरा नजर दौड़ाते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि रामचरितमानस जिसको हम रामायण कहते हैं हमें क्या संदेश देती है, उससे कुछ दृष्टांत, उससे कुछ अध्याय। यूं कहिए कि अध्यायों में से कुछ दृष्टांत को लिया गया है समझने के लिए कि मानवता के लिए क्या संदेश मिल रहा है। आज के युग में रामायण बहुत जरूरी हो गई है। अगर हम संसार में शांति का साम्राज्य चाहते हैं, तो अगर हम चाहते हैं कि प्रत्येक परिवार सुख और शांति से जिए, इन लव एंड हार्मनी, प्रेम से जिए, एकता में जिए, तो रामायण को समझना अनिवार्य है। रामायण का पहला अध्याय बालकांड बचपन की बात करता है। हमारा जीवन बचपन से तो आरंभ होता है, हमारा क्या, पशु हो पक्षी हो उनका भी, यहां तक कि पौधों का भी। बीज अंकुरित होता है, बचपन है उसका, वो बचपन का समय है, उसको संभालना पड़ता है। नहीं, जब पहले पहले कोई बीज अंकुरित होता है, आप कहते हैं देखो शूट आ गई, द सीड इज स्प्राउटिंग, बड़ी प्रसन्नता मिलती है आपको। छोटा सा नन्ना सा पौधा बनना आरंभ होता है, नन्ने से पत्ते आते हैं, उसकी देखरेख करनी पड़ती है, लेकिन हमें कितनी खुशी देता है वो। इसी प्रकार से मानव का जीवन भी देखा जाए, जब बच्चा पैदा होता है बड़ी प्रसन्नता देता है मां बाप को, बच्चे सबको अच्छे लगते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों में पाप नहीं होता, अभिमान नहीं होता, छल कपट नहीं होता। वो खास बात तो ये है, बच्चे का ख्याल उसकी मां रखती है। मां को पता है मेरे बच्चे को कब दूध चाहिए, कब खाना पीना देना है उसको, कब सुलाना है, कब नहलाना है। हजारों काम छोड़कर भी मां दौड़ी आई है बच्चे के पास। अगर बच्चे को तकलीफ है, बच्चे को मां की आवश्यकता है, बच्चा भोला होता है, अभिमान नहीं होता। आप बच्चे के सामने हजारों रुपए हजारों डॉलर रख दें, बच्चे को फर्क नहीं पड़ने वाला, उनका पता भी नहीं क्या है। बच्चा प्रेम का भूखा होता है, प्रेम देता भी है, प्रेम चाहता भी है। बाल कांड निर्दोष कांड है, बालक जैसे निर्दोष निर्विकारी होता है, अगर उस प्रकार की दृष्टि हम रखेंगे तो हमारा जीवन भी निर्दोष हो जाएगा। बच्चा सरल होता है, सिंपल होता है, तो संदेश है बी सिंपल एंड सिंसियर। सीधी सी बात है। तो बाल कांड का पाठ अगर आप नित्य करते रहें, सिंप्लिसिटी और सिंसियरिटी आपके अंदर आती है। खास बात क्या थी, बच्चे का ख्याल मां रखती है। अगर हम भगवान को अपने माता पिता मान लें और सिंपल हो जाए, सरल हो जाए, भगवान हमारा ख्याल रखेंगे। अयोध्या कांड दूसरा अध्याय है। राज्य अभिषेक की तैयारी हो रही होती है। कहा जाता है कि कल सुबह राम को अयोध्या का राजा बनाया जाएगा। अचानक मंत्रा के कहने पे माता कैकेयी मुंह फुला के बैठ जाती हैं। महाराज दशरथ से दो वरदान मांगती हैं। पहला ये कि भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए, दूसरा भगवान राम को 14 वर्ष के लिए वनवास दिया जाए। भगवान राम को पता लगा कि मैं कल राजा बनने वाला हूं, उनके चेहरे पे कोई खास खुशी नहीं आई थी। जब उन्हें पता लगा कि पिताजी ने वरदान दिया हुआ है, वचन दिया हुआ है, या वचन वरदान माता के कई ने मांगे हैं, उनमें से एक ये है कि उनको वनवास जाना 14 वर्ष के लिए, भगवान राम के चेहरे पर शक्ल नहीं आई। कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ कि महाराज दशरथ ने राम से कहा हो राम तो 14 वर्ष के लिए वन चले जाओ। राम को केवल पता लगा कि माता कैकेयी ने दो वरदान मांगे हैं, उसमें से एक वरदान ये है। वे जानते थे पिताश्री कभी नहीं बोल पाएंगे ये, लेकिन मेरे पिता के वचन झूठे ना हो जाए, रघुकुल युद्ध सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाई, संयम निश्चय कर लिया कि मैं 14 वर्ष के लिए वन को जाऊंगा ताकि मेरे पिताजी का वचन झूठा ना हो जाए। कैन यू जस्ट इमेजिन द सिनेरियो? अब कल्पना करके देखिए केवल। आप आपको बताया जाए कि कल हमें डॉक्यूमेंट साइन करने हैं, आपको सारी प्रॉपर्टी मिलने वाली है, सारा व्यापार मिलने वाला है, सारा बिजनेस मिलने वाला है। अचानक चेंज ऑफ माइंड हो जाए, अचानक बोले नहीं नहीं है, तुम्हें नहीं देते, तुम चला भाग चले जाओ, विदेश चले जाओ, 14 साल के जंगल में जाके रहो, वन में जाके रहो, तुम्हारे छोटे भाई को ये सारा व्यापार दिया जा रहा है। आप बोलोगे दिस इज माय लीगल राइट। हो सकता है अपने माता पिता को आप कोर्ट ले जाओ। अरे संसार में हजारों झगड़े होते हैं, बच्चे अपने माता पिता को कोर्ट ले जाते हैं, भाई भाई को कोर्ट ले जाता है। यहां पर भगवान राम प्रसन्न हो रहे हैं, कह देखो मेरा भाई भरत यहां राजा बनेगा, व्हाट एल्स आई कैन आस्क फॉर। और मैं वन को जाऊंगा, कितनी अच्छी बात है, 14 साल में ना जाने मुझे कितने साधु मिलेंगे, कितने संत मिलेंगे, मेरा कितना कल्याण होगा। अयोध्या कांड हमें सिखलाता है समाधि की स्थिति अर्थात इक्वेनिमिटी, समधि, जहां बुद्धि आपकी हर वक्त एक जैसी रहे, दुख में सुख में, सर्दी में गर्मी में, हर स्थिति में बैलेंस रहे, संतुलित रहे। आप जानते हैं राम जी ने शरीर त्याग दिया, महाराज दशरथ ने शरीर त्याग दिया, माता कौशल्या सुमित्रा के कई चले गए, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चले गए, माता सीता चले गए, लवकुश चले गए, लेकिन मंत्रा आज भी जीवित है। आज भी ऐसे बहुत से लोग होंगे जो आपके कानों में नेगेटिविटी, नकारात्मक चीजें डालते होंगे, बुद्धि को घुमाते होंगे। यू हैव टू बी केयरफुल, अवॉइड मंत्रा। तीसरा अध्याय है अरण्यकांड। हम केवल संक्षेप में बात कर रहे हैं आज। अरण्यकांड में जो मेन मैसेज है, जो संदेश है, जो मुझे समझ आ रहा है, वो ये है कि भाई पहले तुम तप करो। राम यहां पर तप करते हैं, वन में रहते हुए भी उन्होंने अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण पाया है। तप का अर्थ यह नहीं है कि आप घंटों घंटों मंत्रों का जाप करें शरीर को कष्ट दें। तप का अर्थ है संयम, सेल्फ कंट्रोल। अब आप देखिए, हमें कहते हैं सेल्फ कंट्रोल, व्हाट डज दिस मीन? आपकी पांच इंद्रियां हैं, आंखें जिससे आप देखते हैं, कान जिससे आप सुनते हैं, नाक जिससे आप सांस लेते हैं सांस छोड़ते हैं, जीभ जिससे आप बोलते हैं और खाना का स्वाद भी लेते हैं, और आपके हाथ पांव या त्वचा शरीर जिससे आप छूते हैं, छूने का आभास होता है, सेंस ऑफ टच। ये पांच इंद्रियां हैं, हमारा सारा जीवन इन पांच इंद्रियों से चल रहा है। अगर आपकी आंखें गलत चीज को बारंबार देखती जाएं, वो चीज आपके मन में जाके परत जमा लेती है। अगर आपके कान बार बार गलत शब्दों को सुनते जाएं, वह शब्द आपके मन में जगह बना लेते हैं। बार बार आप अपनी जुबान से जीभ से कड़वा बोलते जाए, सारा संसार आपका शत्रु बन जाएगा। कहने का तात्पर्य है, हमारी जो पांच इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां, पांच ज्ञान इंद्रियां और एक मन, ये जो 11 चीजें हैं, इनको नियंत्रण में रखना पड़ता है, उन्हें कंट्रोल करना पड़ता है। अरण्य कांड हमें बताता है भगवान राम ने किस प्रकार से अपने ऊपर संयम पाया हुआ था, किस प्रकार से कंट्रोल किया हुआ था। इसी को तप कहा गया है। अलग बात है, माता शबरी के घर भी पहुंचते हैं भगवान राम यहां पर, आज हम उसकी चर्चा नहीं कर रहे। हम ये कह रहे हैं कि तप होगा तो आपके मन की वासनाएं मरेंगी। तप करोगे तो काम रूपी रावण मरेगा, वासनाएं मरेंगी। अपनी वासनाओं पर विजय पाना ही तप है। दैट इज पेनेंस। चौथा अध्याय किष्किंधा कांड, यहां पर सुग्रीव और राम की मैत्री का वर्णन है। कहते हैं शिव और जीव का की मैत्री होती है, सीता जी की खोज यहां से आरंभ भी होती है। सुग्रीव का अर्थ है सुंदर कंठ, जिसका कंठ सुंदर है उसी की राम जी से दोस्ती होगी, मित्रता होगी, मैत्री होगी। तो संदेश क्या है? ऑलवेज स्पीक सॉफ्टली एंड लविंगली। लेकिन सुग्रीव राम जी से कैसे मिलते हैं? हनुमान जी मिलाते हैं। हनुमान का अर्थ है भक्ति, हनुमान का अर्थ है साहस, हनुमान का अर्थ है ब्रह्मचर्य, हनुमान का अर्थ है अनशेकेबल डिवोशन, अनन्य भक्ति, हनुमान का अर्थ है टोटल कंप्लीट अनकंडीशनल सरेंडर, अपने आप को समर्पित कर देना। यहां पर एक कथा आती है, वर्णन आता है, सुरी बताते हैं कि उन्होंने देखा था एक राक्षस एक स्त्री को उठाकर ले दक्षिण दिशा में जा रहा था। वो स्त्री चिल्ला रही थी, अपने आभूषण निकाल निकाल के नीचे फेंक रही थी। वो वह भूषण लेकर दिखाया भगवान राम को, क्या यह भूषण माता सीता के तो नहीं है कहीं? राम जी पहचान जाते हैं भूषण माता सीता के, लक्ष्मण को बुलाते हैं जस्ट टू वेरीफाई, जस्ट टू कंफर्म, लक्ष्मण लुक एट दिस, देखो ये गले का हार सीता का है ना। लक्ष्मण चुप रहे, भैया मुझे नहीं मालूम। देखो ये कान की बालियां सीता की है ना, भैया मुझे नहीं मालूम। अरे ये देखो चूड़ियां बैंगल्स हाथ के कनकन, ये तो सीता की है, लक्ष्मण जी ने मना कर दिया। अंत में भगवान राम ने एक पायल उठाई, बोली ये पायल देखो, ये पांव की पायल, ये टोरिंग जो एक सूर्य अंगूठी पांव की उंगलियों में लगाते हैं, ये तो सीता की है ना। लक्ष्मण बोलते हैं हाँ भैया ये माता सीता की है। राम जी बोलते हैं मैं तुझे इतने आभूषण दिखाए तुम नहीं पहचाने, केवल पांव के आभूषण पहचान गए, व्हाट इज दिस। लक्ष्मण कहते हैं भैया मैंने माता सीता को पांव से ऊपर कभी देखा ही नहीं, केवल मेरी दृष्टि चरणों में रही है। कैन यू इमेजिन द टाइप ऑफ मोरालिटी यूज टू एग्जिस्ट, द एथिक्स वैल्यूज, आप क्या कल्पना कर सकते हैं? आज के जमाने में भाई दो दिन के लिए बाहर जाए, दूसरा भाई बोले चलो भाभी पिक्चर देख कर आए, घूम कर आए, अगले अध्याय सुंदरकांड पांचवा अध्याय जिसको रामायण का हृदय माना जाता है, ईश्वर से मैत्री हुई तो जीवन सुंदर हो गया। यहां पर राम भक्त हनुमान जी रामेश्वर से लंका की यात्रा करते हैं, लंका में जाके तहस नहस करते हैं, माता सीता की खोज करते हैं, पराभक्ति के दर्शन करते हैं, लंका का दहन करते हैं। अकेले हनुमान ही इस सागर को पार कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास राम नाम के शक्ति का प्रताप है, ब्रह्मचर्य की शक्ति है, भक्ति है। सागर पार करना हो तो आपको राम का नाम जपना होगा। यह सागर समुन्द्र नहीं है, ओशन नहीं है, दिस इज द ओशन ऑफ द लाइफ, ओशन ऑफ डिल्यूजन, माया को पार कर रहे हैं आप। और सुंदर कांड का पाठ नित्य किया जाता है इसलिए कि आपके जीवन में सुंदरता है। हनुमान जी माता सीता के दर्शन करते हैं, उन्हें भगवान राम की अंगूठी देते हैं, विश्वास दिलाते हैं वह राम जी का दूत है, राम जी यहां आएंगे, माता सीता को छुड़ा के ले जाएंगे, रावण को मारेंगे। यहां काम खत्म हो गया था हनुमान जी का, चाहते तो माता सीता को अपने कंधे बिठा के ला सकते थे, माता सीता ने मना कर दिया मैं किसी पराये पुरुष को नहीं छूंगी, व्हाट इज द मैसेज है? आप समझते हैं? लक्ष्मण ने जानबूझकर अपने आप को पकड़वा दिया, अपनी पूंछ में आग लगवा दी, लंका का दहन कर दिया। क्यों? वह जानता था कि राम जी लंका आएंगे रावण को मारने के लिए, इससे पहले मैं शक्ति का जायजा ले लूं, रावण की कितनी शक्ति है, कहां अस्त्र पड़े हैं, कहां शस्त्र पड़े हैं, क्या शक्तियां हैं, और सब कुछ जला के राख कर दिया, अशक्ति आदि कर दी। एक दूत होता है जो हमेशा उल्टा काम करके आता है, एक दूत होता है तो वही काम करके आता है जो बोला गया है, एक दूत होता है जो ऑब्जेक्टिव समझता है हमें क्या करना क्या नहीं करना, जितना काम बोला जाए उससे ज्यादा करके आते हैं। लंका कांड छठा अध्याय राघवंशम गतः, लंका में युद्ध होता है, कुंभकर्ण मेघनाद मारे जाते हैं, भगवान राम रावण को मारते हैं, दशानन रावण, चार वेद छह शास्त्रों का ज्ञाता दशानन रावण, बलवान रावण जिसने अपने हाथों में अपनी भुजाओं में हिमालय को उठा के भगवान शंकर को प्रसन्न कर लिया, जिसके सामने देवता भी थरथराते थे। वो रावण जो बहुत अमीर है, सोने की लंका है, राजा है, बलवान है, बुद्धिमान है, ज्ञानी है, सब कुछ है उसके पास, फिर भी एक साधारण मानव से नंगे पांव के सामने खड़ा है वानर के सेना उनसे हार गया। अनइमेजिनेबल। राम जी ने ज्ञान प्राप्त किया तो राम जी ने अब उस ज्ञान को प्रैक्टिकल अपने लाइफ में उतारा। रावण ने खाली याद किया, रट्टे लगाए हुए हैं, सब कुछ मालूम है लेकिन अपने जीवन में उतारा नहीं है। ही डिड नॉट पुट इन टू प्रैक्टिस। जिसको काम मारता है ना उसको काल भी मार देता है। लंका का उल्टा शब्द को काल होता है। रावण काम है, काम के अधीन है, तुम्हारा क्या। उत्तरकांड सातवां अध्याय, भगवान राम वापस आ जाते हैं अयोध्या, माता सीता को ले आते हैं, अयोध्या में खुशियां मनाई जाती हैं, भगवान राम को वहां का राजा बनाया जाता है। हम बोलते हैं दीपावली, विचार कीजिएगा जरा आप। हम बोलते हैं दिवाली है, दीपावली है, ज्योत की लड़ियां जलाते हैं, दीपक की लड़ियां जलाते हैं, एक ज्योत से दूसरे ज्योत को जलाते हैं। अमावस की रात है दिवाली, सारा अंधकार भाग जाता है। अगर आपके घर में अंधकार पड़ा हुआ हो तो आपको केवल एक लाइट ऑन करनी है या दीपक जलाना है। अगर आपके घर में अंधकार पड़ा हो 10 दिन से तब भी आपको एक दीपक जलाना है। अगर आपके घर में हजारों वर्षों से अंधकार पड़ा हुआ हो तब भी आपको केवल एक दीपक जलाना है। काम वही करना है। डज नॉट मैटर कितनी सदियों का, कितने युगों का अंधकार है, लेकिन एक दीपक जलाने से अंधकार हट जाता है। वह दीपक है धर्म, सत्य, शांति, प्रेम और अहिंसा का। भगवान राम धर्म के प्रतीक हैं। अगर आपने अपने जीवन में धर्म का दीपक जला दिया, धर्म के रास्ते पर चल पड़े, धर्मारक्षते धर्मः, धर्म ही धर्म की रक्षा करेगा। केवल आपको धर्म के रास्ते में पहला कदम बढ़ाना है विद एब्सोल्यूट टोटल अनशेकेबल फेथ, अनन्य भक्ति के साथ। जीवन आपका सुंदर हो जाएगा, आपके जीवन में रामायण घटित हो जाएगी। जय श्री साईं राम।